السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 پارہ نمبر 16. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. الحمد لله، اللہ کا شکر احسان ہے کہ ایک کے بعد ایک سورہ ہمارا کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے اور نئے سورے کا ہم آغاز کرتے جا رہے ہیں. قرآن کریم میں جو سورتیں دی گئی ہیں، جیسے کہ علماء کرام یہ کہتے ہیں، مفسرین، کہ قرآن کی سورتوں کو چیپٹر کہنا بھی مناسب نہیں ہے اور قرآن کی آیات کو ورس کہنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ آیات آیت میں، یہ آیت کے معنی میں اور سورتوں کے معنی میں جو بات پائی جاتی ہے، یعنی جو معنی بتائے جاتے ہیں، وہ چیپٹر اور ورس میں کنورٹ ہو ہی نہیں سکتے، اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا. جو وسعت سورت کہنے میں ہے اور جو وسعت آیت کہنے میں ہے. اور چیپٹر، چونکہ ہم آپ کو معلوم ہے کہ چیپٹر جو کہا جاتا ہے، لیسنس کو کہا جاتا ہے، تو لیسنس یا چیپٹر جو ہوتے ہیں، وہ اس میں اصل میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ایک خاص ٹاپک لے لیا جاتا ہے اور اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ بات کی جاتی ہے اور ٹاپک سے ہٹا نہیں جاتا. لیکن قرآن کریم میں صورتیں جو ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو صورتیں قرآن میں جس طرح سے ترتیب وار دی ہیں ہمیں، یا وحی کی صورت میں جو نازل ہوئی ہیں، ان صورتوں کی بات بالکل مختلف ہے. صورتوں میں آپ کو ایک ہی مضمون نہیں ملے گا، بلکہ پیچھے کے دہرائے ہوئے مضمون بھی آپ کو دوبارہ اس میں مل جائیں گے. اسی لیے اس کو چیپٹر کہنا مناسب نہیں ہے، اسے سورہ ہی کہا جائے گا. اور پھر چونکہ سورہ جو طٰہٰ ہم ابھی آغاز کرنے والے ہیں، جس کا اس کے بارے میں جو روایت ہمیں ملتی ہیں، اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سورت بالکل ہی اس زمانے کی نازل ہوئی ہے جب ابھی اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم، یعنی انتہا کو پہنچ گیا تھا. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے، یعنی نزول قرآن کے ابتدائی صورتوں میں سے یہ صورت ہمیں معلوم ہوتی ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے جو ہمیں ملتا ہے، اس میں ہمیں سورۃ طٰہٰ کا ذکر ملتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ کس طرح سے انسان کو ایک خوشی ہوتی جاتی ہے کہ اچھا، یہ فلاں صورت سے یہ واقعہ ریلیٹڈ ہے. تو یہ جو نزول قرآن یا اسباب نزول قرآن جس کو کہتے ہیں علوم القرآن میں، وہ چیپٹر بہت ہی دلچسپی والا چیپٹر ہوتا ہے یا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے اس وقت کے حالات ہم کو معلوم ہوتے ہیں کہ اچھا، یہ صورت یا یہ آیت کن حالات میں اتری، اس وقت حالات کیا تھے، کیا اس وقت ماحول تھا، اور کس طرح سے اس صورت کو نازل کر کے اس وقت کے حالات پر اس کو منطبق کیا گیا ہے، اس پر رکھا گیا ہے. تو ایک داعی دین کے لیے اسباب نزول، یعنی قرآن کی آیتوں کا جو سبب ہے نازل ہونے کا، اگر اس کے بارے میں اس کو معلومات ہو، تو اسے ایک اندرونی خوشی بھی ہوتی ہے اور اپنے ماحول کے حساب سے وہ اس کو ریلیٹ کر سکتے کہ اچھا، مجھے آج کے دور میں اگر کام کرنا ہے تو مجھے کیسے کام کرنا چاہیے. جو بہت ہی مشہور واقعہ ہم کو ملتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا، آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ویسے اسلام کی جو حقانیت ہے ان کے دل میں اتر چکی تھی. جو ایک مشہور واقعہ بتایا جاتا ہے کہ جب وہ قرآن سن رہے تھے کعبۃ اللہ کے غلاف کے پاس کھڑے رہ کر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے، اور وہی بات وما ہوا بقول شاعر، کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس وقت خیال پیدا ہو گیا تھا کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی یہ بات کہتے جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت سے ان کے دل میں اسلام کی حقانیت بیٹھ گئی تھی. جب ایک دن انہوں نے دیکھا کہ آپس میں گھروں میں کوہرام مچا ہے، اور جو ہجرت حبشہ ہوئی تھی، اس ہجرت حبشہ کے بعد سے گھروں میں جن کے بچے یا جن کے گھر کے لوگ ہجرت کر چکے تھے، ان کے گھروں میں अफसरदगी का, या समझे जो भी बात है, जैसे माहौल होता है बच्चे चले जाते हैं घर से, तो इस तरह का माहौल था। और भाई भाई आपस में जुदा हो गए थे, तो उन लोगों ने जहन में ये बात बिठा ली थी कि इस्लाम की वजह से हमारे घरों में फूट पड़ गई है, घर घर नहीं रहे और लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये बात बहुत ही नागवार लगी और उन्होंने सोचा कि आज ही मैं ये काम तमाम कर देता हूँ, यानी जिनकी वजह से ये दीन इस्लाम फैल रहा है उन्हीं का खात्मा किए देते हैं नऊज़ु बिल्लाह, ताकि ये मामला ख़त्म हो जाए, ये जो घर घर में फूट पड़ चुकी है। और यही इरादा किए वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए निकले। जब जाने लगे गुस्से से, तो रास्ते में उनकी मुलाकात हो गई किसी सहाबी से, और उन्होंने भी अपना इस्लाम छुपाए हुए था। जब उन्होंने पूछा कि उमर इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो, कहाँ का इरादा है, तो कहने लगे कि बस जा रहा हूँ और मामला ख़त्म करना चाहता हूँ, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो सहाबी ये चाहते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बच जाएं, यानी उमर गुस्से में वहाँ जाएंगे, हो सकता है कुछ मामला मज़ीद और बिगड़ जाए। तो उन्होंने उस मामले को डाइवर्ट करने के लिए, यानी उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को वहाँ से मोड़ने के लिए, उन्होंने उन सहाबी ने कहा कि उमर पहले अपने घर की तो खबर लो। और इस उस वक्त की बातों से पता चलता है, जो उन लोगों का आपस का जो मुकालमा है, वो सहाबी का और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का, तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने गुस्से से उन सहाबी से भी कहा, ऐसे लगता है कि तुम भी बेदीन हो चुके हो। तो उन्होंने कहा कि पहले तुम अपने घर की खबर लो, यानी उनसे मुराद ये थी कि आपकी बहन और आपके बहन भाई, यानी उमर रजी अल्लाह तआला के बहन और बहन भाई इस्लाम कबूल कर चुके थे, और ये साबिकून अल अव्वलून में से थे। ये लोग फातिमा बिनते खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हा का जिक्र हमें मिलता है कि उस वक्त सिर्फ जो 33 या 37 लोग थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उसमें उन लोगों में फातिमा बिनते खत्ताब का भी नाम हमको मिलता है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस वक्त फातिमा बिनते खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया था, यानी बिल्कुल साबिकून अव्वलून में शुमार होता है उनका। तो बहरहाल उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का वहाँ से तो ध्यान हट गया और वो अपने बहन और बहन भाई के घर गए। जब वहाँ पहुँचे तो उनको आवाज़ आने लगी कुरान की तिलावत की, और उस वक्त यही सूरह तौहा की आयतें तिलावत की जा रही थी। उन्होंने गुस्से से दरवाज़ा खटखटाया, नॉक किया। अब अंदर जो बैठे हुए लोग थे वो घबरा गए और उनको लगा कि कुछ मामला बिगड़ा हुआ है। तो उन्होंने, उनकी बहन ने कहा कि फौरन ही वो सहीफे जो थे, यानी जो औराक थे कुरान के लिखे हुए, जिस पर से देखकर उनको पढ़ना सिखाया जा रहा था, उन औराक को कहीं छुपा कर रख दिया। और खब्बाब बिन अरत रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि उनको कुरान पढ़ा रहे थे, वो दरवाजे के पीछे छुप गए किसी एक कॉर्नर में जाकर। और जब उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु अंदर दाखिल हुए और कहा कि कहाँ से आवाज़ आ रही थी और क्या आवाज़ थी और तुम लोगों ने क्या किया है और तुम लोग बेदीन हो गए हो, तो उनकी बहन कहने लगी कि तुम भी इस तरफ आ जाओ, यही असल दीन है, एक अल्लाह को मानो। वो गुस्से में आ गए और लड़ाई करने लगे, धक्का भी दे दिया। यानी बहन और बहन भाई में आपस में कुछ मसला हो गया, और जब बहन बचाने के लिए आई तो आपने बहन को भी धक्का दे दिया, और उस चक्कर में बहन का सर जख्मी भी हो गया। ये जख्मी होने की जो बात है इसके बारे में थोड़ा सा इख्तलाफ है, कुछ रिवायत से पता चलता है कि सर जख्मी नहीं हुआ था, ये अनऑथेंटिक बात है। बहरहाल लेकिन सर जख्मी हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन आप उनके बहन की हिम्मत देखिए, फातिमा बिनते खत्ताब। तो उन्होंने, वो कहने लगी कि ए उमर, तुम कुछ भी कर लो, इस्लाम अब हमारे दिल से नहीं जा सकता। अब ये देखकर और ये बात सुनकर उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही हैरान हो गए और सोचने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है माशाल्लाह अकलमंद तो थे ही, बहादुर भी थे और हक को पहचानने की सलाहियत भी थी, क्योंकि पहले ही कुरान से मुतासिर हो चुके थे। तो कहने लगे कि अच्छा, यानी इतनी दीन इस्लाम ने इतनी ताकत दे दी बहन के अंदर कि इस्लाम की वजह से वो अपने भाई को भी कुछ नहीं मान रही है और अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रही है। इसलिए उनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि अच्छा, आखिर देखें तो सही कि वो क्या है कलाम। तो उन्होंने कहा, बहन से कहा कि अच्छा ठीक है, बताओ क्या था वो कलाम। तो बहन पहले तो डर गई और कहा कि तुम उसके साथ, उस कलाम के साथ कोई बदतमीज़ी ना करने लगो, लिहाजा कहने लगी कि नहीं, वो कलाम तुम नहीं छू सकते। उन्होंने कहा कि नहीं बताओ तो सही। तो कहा कि पहले तुम गुस्ल कर लो, उसके बाद बताते हैं। उमर रदी अल्लाह तआला ने वहीं गुस्ल किया, फिर पीछे से खब्बाब बिन अरत रदियल्लाहु तआला अन्हु जो कहीं कॉर्नर में छुपे हुए थे वो वहाँ से निकल खड़े हुए और कहने लगे कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ही दिन पहले ये दुआ करते हुए सुना था कि ए अल्लाह ताला उमर बिन ख़त्ताब या अबू जहल इन दोनों में से किसी को इस्लाम के लिए उनका सीना खोल दे। तो मुझे लगता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु के हक़ में कबूल हो गई है। और फिर उन्होंने मुबारकबाद दी, गुसल करके उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु आए, उन्होंने कलमे शहादत पढ़ा और फिर ये कुरान की तिलावत की, सूरह तौहा की। तो ये वही सूरह तौहा है जिसे पढ़कर उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु के दिल में इस्लाम की हक्कानियत जाग उठी। जब ये कलाम उन्होंने सुना उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने, तो हैरान रह गए और बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। कहने लगे कि वाकई में ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। तो सूरह तौहा, इसमें वैसे तो हमको मूसा अलैहिस्सलाम का क़स्सा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आप देखिए कि हर सूरत की अपनी एक अहमियत है। यानी इस हिसाब से एज ए दीन को आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, एक दीन के दाई को किन हालत में किस तरह से अगर वो गुजर रहा है किन हालत से, तो उस सूरत में उसको क्या करना है और किस तरह से उसको सपोर्ट मिल सकता है। तो वो सूरत जिसने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु का दिल बदल दिया, वो सूरत जो हमें, जिससे एक और बात हमें पता चलती है, और ये बात आप ख़ास तौर से याद रखें कि यही सूरह तौहा जो कि कसरत से ये वाक़या रिवायत किया गया है उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु के कबूल इस्लाम का। और इससे हमें क्या बात पता चल रही है, आप ख़ुद देखें कि जिस वक्त उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ दाखिल हो रहे थे घर में, उस वक्त वो औराक पर ये कुरान की आयतें, ये सूरत लिखी हुई मौजूद थी। तो इससे फिर क्या मालूम होता है आप बताएं? क्योंकि मुस्तशरिकीन जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो कहते हैं नाऊज़ुबिल्लाह कि कुरान बहुत दिनों बाद लिखा गया, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद लिखा गया, लिहाजा इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हो गई। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह हमें माफ़ करे, मजबूरी में ये बात कहना पड़ रही है। और वो कहते हैं कि चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं लिखा गया क्योंकि कोई लिखने वाले मौजूद नहीं थे या कोई सबूत नहीं मिलता है, तो वो कहते हैं कि इसमें चेंजेस बहुत हो गए हैं या आगे पीछे आयत हो गई हैं। तो ऐसा नहीं है, सूरह तौहा और उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु के कबूल इस्लाम से बात हमें कन्फर्म होती है और मालूम होती है कि कुरान उस ज़माने में भी लिखा जा रहा था। यानी जब वही नाजिल होती थी तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम को बुलवाते और जो उस वक्त लिखने वाले लोग मौजूद थे उनसे लिखवाया जाता कुरान, और साथ में हिफ्ज़ भी करवाया जाता। यानी दोनों काम चल रहे थे। तो इससे मालूम होता है कि कुरान की हिफाज़त का जो काम किया गया, यानी अल्लाह ताला ने अपने उस वक्त के जो अल्लाह ताला के नेक बंदे थे उनके दिलों में ये बात डाली कि इसको हिफ्ज़ भी करवाया जाए और साथ में लिखा भी जाए। ये अल्लाह की तरफ से इंतज़ाम था असल में कुरान की हिफाज़त का, क्योंकि अल्लाह सुबहाना ताला ने ख़ुद ये बात इरशाद फरमाई है कुरान में कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक इस कुरान को हमने नाजिल किया है, इस ज़िक्र को, और हम ही इसकी हिफाज़त करने वाले हैं। किसी और सहीफे, किसी और किताब के बारे में ये बात हमें नहीं मिलती है कि अल्लाह ताला ने उसका ज़िम्मा लिया हो, लेकिन सिर्फ़ कुरान एक वाहिद किताब है जिसके बारे में हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह सुबहाना ताला ने इसकी हिफाज़त का ज़िम्मा लिया। तो हिफ्ज़ और किताबत दोनों तरीक़ों से कुरान की हिफाज़त हुई है। इसीलिए कुरान के बारे में आता है, जो कुरान की तारीफ़ की गई है, कि अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है जिब्रील अमीन के ज़रिए से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर, जिसका पढ़ना, जिसकी तिलावत बायस अजर व सवाब है, जिस पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, और जो लोहे महफूज में भी है और हमारे हाथों में भी है कुरान, जो तवातुर से साबित है। और तवातुर का मतलब होता है कि जिसके पढ़ने वाले, लिखने वाले, याद करने वाले हर दौर में हज़ारों लाखों की तादाद में रहे हों, जिनका झूठ पर जमा होना नामुमकिन हो। तो कुरान जब से नाजिल हो रहा था उस दौर से लिखा भी जाता रहा, पढ़ा भी जाता रहा, हिफ्ज़ भी होता रहा, तीनों तरीक़ों से इसकी हिफाज़त हुई है। और वैसे मेन जो बताई जाती है बात उलूमुल कुरान में, कि हिफ्ज़ और किताबत के ज़रिए से अल्लाह सुबहाना तआला ने इसकी हिफाज़त का इंतज़ाम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक और जो बात हमें मालूम होती है सूरह तौहा के बारे में, किसी भी ऑथेंटिक रिवायत से ये बात हमें नहीं पता चलती है कि सूरह तौहा में जो हरूफ मुकत्तआत आए हैं, तौहा तोए है और हा है खड़ा ज़बर, और ये हरूफ मुकत्तआत में से आता है, तो किसी ऑथेंटिक रिवायत से बात हमें नहीं मालूम होती कि ये तौहा दरअसल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था। इवन ना कोई सहाबा कराम ने, ना कोई सहाबी ने, ना किसी और लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नाम से मुखातिब किया हो। इसलिए जो एक शेर हमें मिलता है कि निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही यासीन वही कुरान वही ताहा, ये शेर शिर्क में आ जाएगा। हम नहीं इसको पढ़ सकते, इस शेर को सिर्फ आपको बताने के लिए आपको पढ़कर सुनाया गया है, क्योंकि अव्वल और आखिर जो सिफत है वो किसकी सिफत है आप बताएं? अल्लाह सुबहाना ताला की। वही अव्वल है वही आखिर है, जो हमें दुआ सिखाई गई है मसनून दुआ, उसमें ये सिफात अल्लाह सुबहाना ताला के लिए इस्तेमाल की गई हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही सिफात नहीं हो सकती हैं जो अल्लाह सुबहाना ताला की है, क्योंकि अल्लाह सुबहाना ताला हमारा मालिक, हमारा खालिक, हमारा रब, हकीकी बादशाह, मालिक कायनात है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से मबऊस किए गए हैं। आम इंसानों से अलग हैं क्योंकि आप नबी हैं, लेकिन आप बंदे हैं अल्लाह ताला के। इसीलिए हम जो पढ़ते हैं अल्लाह के रसूल के बारे में, जो गवाही देते हैं, उसमें अब्दुहू व रसूलहू का लफ्ज़ आता है कि उसके बंदे और उसके रसूल। तो ये सोचना कि यासीन और ताहा अल्लाह के रसूल के नाम है, ये दुरुस्त नहीं है। और इसी बिना पर ये जो हुरूफ मुकत्तआत आते हैं, मिलते हैं हमें कुरान के, तो उलमाए कराम और मुफस्सरीन इस बात पर जोर देते हैं और कहते हैं कि हुरूफ मुकत्तआत के नाम रखना ये भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि इनके मानी अल्लाह ताला ही जानता है, किसी इंसान को इसका इल्म नहीं है, लिहाजा यासीन या तौहा नाम रखने को मना किया गया है। मुफस्सरीन कराम ने इसको पसंद नहीं किया। तो बहरहाल ये इस सूरत के ताल्लुक से जो कुछ बातें थी उसे हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि कुरान करीम में अल्लाह सुबहान तआला इस सूरत में हमारे लिए क्या इरशाद फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तौहा मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तन्ज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ध वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व मा बैनहुमा व मा तहत सरा। तौहा, हमने आप पर यह कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मशक्क़त में पड़ जाएं। लितश्क़ा शक़ा से है, ये लफ्ज़ हम पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, मशक्क़त में पड़ना, तकलीफ़ में या मुश्किल में पड़ जाना। इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, ये तो नसीहत है उसके लिए जो डरता है। तंजीलम मिम्मन खलक़ल अर्द वस्समावाति अल-उला, ये उस ज़ात की तरफ से नाजिल हुआ जिसने ज़मीन और बुलंद आसमानों को पैदा किया। सुभान अल्लाह। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान से जिसने अपने अर्श पर करार पकड़ा है, यानी उस रहमान की तरफ से नाजिल किया गया है जिसने अपने अर्श पर करार पकड़ा। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व मा बैनहुमा व मा तहत सरा, जो कुछ अर्ज और समावात और उनके दरमियान और जो अर्ज़ की इंतहाई गहराई में है, उन सब चीज़ों का वही मालिक है। सुभान अल्लाह। यानी आप देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके ये बात फरमाई जा रही है कि ये कुरान जो हमने नाजिल किया है, तो कुरान के नुज़ूल के लिए जो बातें बताई गई कि हमारा मकसद ये नहीं है कि इससे आप मुश्किल में पड़ जाएँ, मुशक्क़त में पड़ जाएँ, ये तो दरअसल एक नसीहत है, और किसके लिए नसीहत है? जो डरता है। दो बातें हमें मालूम होती हैं इस आयत से कि बाज़ रिवायत से पता चलता है कि चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान नाजिल हो रहा था, और चूँकि सूरह मुज़म्मिल की जो आयत हमें मिलती हैं उन आयत से पता चलता है कि तहज्जुद आपके लिए कंपलसरी कर दी गई थी, तो चूँकि आप कुरान बहुत देर तक खड़े रह कर पढ़ा करते थे जिसकी वजह से आपके पाए मुबारक में वरम भी आ जाता था, तो हो सकता है ये उस लिए हो कि आपको मुसीबत में डालने के लिए, आपको मशक्क़त में डालने के लिए कुरान हमने नहीं नाजिल किया है। इसीलिए हम वहीं पर देखते हैं कि जितना हो सके आपसे मा तयस्सर मिन, कि जो आसानी से आपसे हो सके उतना कुरान आप पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि आप आधी रात तक या आधी रात से ज़्यादा ही खड़े रहकर कुरान पढ़ा करिए, बल्कि जितना आपसे आसानी से हो सकता है उतना आप कुरान पढ़िए। तो इस कुरान से दरअसल मशक्क़त में नहीं डाला गया, बल्कि इस कुरान को तो इसलिए नाजिल किया गया ताकि लोग इससे डरें, नसीहत कबूल करें, अपनी आखिरत को संवारें। और दूसरी जो बात हमें पता चलती है कि दूसरा जो मानी हो सकता है इससे कि आप मशक्क़त में ना पड़ जाएं, हमने ये कुरान इसलिए नहीं नाजिल किया कि आप मशक्क़त में पड़ जाएं। तो कहा जाता है कि चूँकि जब कुरान नाजिल हो रहा था तो सरदारा ने कुरैश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने लगे। आपको शायर कहा, आपको काहिन कहा, आपको मजनून कहा, कभी साहिर कहा, या कहा कि कोई ग़ुलाम आकर इसको पढ़ा जाता है। और इस कुरान ही की वजह से, चूँकि अभी तक 40 साल की उम्र तक, जब तक कुरान के नुज़ूल की इब्तिदा नहीं हुई थी, अब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बहुत स्मूथ थी, समझें, यानी उस वक्त के माशरे के लिहाज से, कि कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, आपके ऊपर किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया था, आपको सादिक और अमीन कहा जाता था, आपकी बहुत इज्जत थी। लेकिन जैसे ही कुरान नाजिल हुआ, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाने लगे, आपको तकलीफ़ दी जाने लगी इस कुरान के नुज़ूल के बाद। एक मानी ये भी हो सकता है कि कुरान आपके ऊपर इसलिए नहीं नाजिल किया गया कि आप मशक्क़त में पड़ जाएं या मुश्किल में पड़ें, या ज़रूरी नहीं कि आप हर एक को पकड़ पकड़ कर ही कुरान सुनाएं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश होती थी कि हर कोई इस्लाम कबूल कर ले। बाज़ रिवायत से पता चलता है खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा जब मौजूद थी उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा इंतहाई बुखार में मुब्तला थे। आपको कहीं से ख़बर लगती है कि कोई काफ़िला आया है और हज का मौसम था, और वो काफ़िले के आने की वजह से आपको बेचैनी शुरू हो जाती है कि किसी तरह से मैं उस काफ़िले वालों तक अल्लाह का ये पैगाम पहुँचा दूँ और उनको जाकर कुरान सुना दूँ। खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा मना भी करती हैं, तब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हो सकता है उस कबीले के लोग या जो काफ़िला आया है उसमें से कोई इस्लाम कबूल कर ले या उन तक ये बात पहुँच जाए। तो बुखार की हालत में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के इस पैगाम को पहुंचाने के लिए वहां जाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी फ़िक्र थी कि इस कुरान को मुझे पहुंचाना है। और आप देखिए कि अल्लाह के रसूल की पूरी ज़िंदगी हमारे सामने है। आपने दीन की दावत का जो काम किया, आपने कुरान ही को पेश किया। सबसे पहली जो चीज़ थी वो कुरान थी, कुरान की आयात थी। तो इससे एक और बात हमें मालूम होती है कि दावत और तबलीग का जो काम किया जाएगा कुरान ही से इब्तिदा की जाएगी। लेकिन चूंकि वो लोग अरबी जानने वाले थे लिहाजा उनको आसानी थी, और चूंकि आज के दौर में हम देखते हैं कि लोगों को, हम मुसलमानों ही को अरबी नहीं आती तो गैर मुस्लिमों को कहाँ से आएगी। तो बहरहाल एक और बात हमें मालूम होती है कि दावत और तबलीग का काम कुरान से ही किया जाए, और उसके लिए फिर गैर मुस्लिमों को अगर आज हमें कुरान की दावत को पेश करना है तो हमें ऐसे कुरान बग़ैर अरबी के ट्रांसलेशन वाले हमें तैयार करने चाहिए ताकि उन तक उनकी ज़ुबान में इस कुरान का पैगाम, मैसेज पहुंच पाए, पहुंचे। तो चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश हुआ करती थी कि हर हाल में कुरान को लोगों तक पहुंचाएं, तो इस बिना पर कहा गया कि कुरान हमने आपके ऊपर इसलिए नहीं नाजिल किया गया कि आप मशक्क़त में पड़ जाएँ, तंगी में पड़ जाएँ। और दरअसल ये हरूफ मुक़त्तआत के बाद अक्सर जो देख बात देखी गई है कि हरूफ मुक़त्तआत जहाँ आते हैं उसके बाद लाजमन कुरान ही का जिक्र किया जाता है, या तो कुरान की हक्कानियत के बारे में बात की जाती है या कुरान की तारीफ़ में, बहरहाल लेकिन कुरान ही से रिलेटेड बातें होती हैं। और दरअसल ये हरूफ मुक़त्तआत एक चैलेंज भी था उस वक्त के अरब के लोगों के लिए कि कुरान इन्हीं हरूफ से मिलकर बना है, और इनका जो सही मानी है या इसका मफहूम है तायुन करना किसी के बस की बात नहीं है, ये अल्लाह ताला ही को इसका इल्म है। और मुनकरिन के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि अगर तुम इसे इंसानी कलाम समझते हो तो इस जैसा कलाम तुम भी बना लाओ, लेकिन हम जानते हैं कि वो लोग नहीं बना सके। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये कुरान हमने आप पर इसलिए नहीं नाजिल किया कि आप मशक्क़त में पड़ जाएँ, और जो नहीं भी सुनना चाह रहे आप उसको भी सुनाएं। तो ये ज़बरदस्ती वाला मामला नहीं है, इस्लाम एक दीन ऐसा है कि जो किसी पर ज़बरदस्ती नहीं करता, ला इकराह फिद दीन, यानी सामने वाला अगर कबूल करना चाहे उसकी मर्ज़ी पर छोड़ा जाएगा कि तुम्हें बात अगर समझ में आती है तो तुम कबूल करो इस्लाम, वरना ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा कि तुमको इस्लाम कबूल ही करना है हर हाल में। तो कहा जा रहा है कि हमने ये कुरान इसलिए नहीं नाजिल किया कि आप मशक्क़त में पड़ जाएं और ज़बरदस्ती लोगों को इसको सुनाएं, या लोगों के दिलों में आप ईमान उतारने की कोशिश जो कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता। आप अपने आप को हल्का ना करिए या अपने आप को मशक्क़त में ना डालें। जिसको कबूल करना होगा वो ख़ुद कबूल कर लेगा। और ये तो किसने नाजिल किया गया है, इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, ये तो दरअसल इसलिए नाजिल किया गया है कि लोग इससे डरें, या जो डरने वाला है वो इससे डरे। इससे एक और बात हमें मालूम हुई कि कुरान की आयतें पढ़ते हुए हमें गौर फिक्र करना चाहिए, क्योंकि इसकी आयत हमें आखिरत की याद दिलाती है। इसमें इबरत हासिल करने के लिए बहुत सारा सामान मौजूद है, वाक़यात हैं, किस्से बयान किए गए हैं, और असल चीज़ यही है कि दुनिया में रहते हुए इंसान अपनी आखिरत की फ़िक्र करे। वो दुनिया में रहते हुए इस बात से डरे कि मेरा हिसाब किताब लिया जाने वाला है और मुझे अल्लाह के आगे हिसाब किताब देना है अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे के बारे में, मैं आज़ाद नहीं हूँ। तो कुरान का असल मकसद ही यह है कि वो डराता है, नसीहत करता है, इबरत दिलाता है, लिमन यख्शा, जो डरता है उसके लिए ये नसीहत है। फिर आप देखिए कुरान की अहमियत बताई गई है कि तंजील मिम्मन खलकल अर्द व समावातिल उला, सुभान अल्लाह, कि किसकी तरफ से नाजिल किया गया है, ये उस ज़ात की तरफ से नाजिल हुआ है जिसने ज़मीन और बुलंद आसमानों को पैदा किया। सुभान अल्लाह, ज़मीन और आसमान को इंसान देखे, ये तो सबसे बड़ी निशानी है अल्लाह सुबहाना ताला की, कि ये जो ज़मीन आप देखिए कि जो मुसलसल गर्दिश में है ज़मीन, इंसान आज तक इसमें इस तरह से होल नहीं कर सके। हालांकि हम सब जानते हैं कि ज़मीन गर्दिश कर रही है, तैर रही है फ़ज़ा में, लेकिन कभी ऐसे नहीं हुआ कि यहाँ से आपने इसमें होल करना शुरू किया हो, सुराख करना शुरू किया हो और ज़मीन के दूसरी जानिब से होल हो गया हो, नहीं। कि कितना इसका जो इसकी जो कोर है, तो जो ऊपर का हिस्सा है और जो नीचे का हिस्सा है, कितना वो मोटा होगा, और कैसी सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की आप देखें अज़मत, और अल्लाह ताला की तख्लीक आप देखें कि अल्लाह सुभान ताला ने जो ज़मीन और आसमान को पैदा किया बनाया, तो जो रब ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया बनाया उस रब ही की तरफ से ये कुरान नाजिल हुआ है। तो ज़रा इंसान आसमान पर तो गौर करे, ज़रा वो ज़मीन की तरफ तो देखे, कि ऐसी चीज़ जो अल्लाह सुभान ताला ने पैदा की बनाई, जो किसी के बस की बात नहीं है, उसी रब की तरफ से ये कुरान नाजिल किया गया है। तो इस कुरान की अहमियत का अंदाज़ आप लगाएं। तो तंजीलन नाजिल किया गया है उस ज़ात की तरफ से जिसने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया, सुभान अल्लाह, अर रहमान अल अर्श इस्तवा, उस रहमान की तरफ से जिसने अपने अर्श पर करार पकड़ा, जो अर्श पर मुस्तवी हुआ। यहाँ पर इस आयत के बारे में हमें तफासिर में जो ज़िक्र मिलता है, अहादीस में भी, सॉरी आसार में जो हमें लफ्ज़ मिलता है, या आसार में जो वाक़या हमें मिलता है, कि एक दफ़ा इमाम मालिक से किसी ने इस आयत की तफसीर पूछी और कहा कि इस्तवा अलल अर्श क्या है, यानी वो क्या कैफियत है। कहा जाता है कि इमाम मालिक बहुत परेशान हुए, घबराहट इतनी ज़्यादा उनके ऊपर तारी हो गई कि कपकपी उनके जिस्म पर तारी हुई, पेशानी पसीने से अर्क आलूद हो गई, और कई देर तक वो सर नीचे किए इस तरह से बैठे रहे और सवाल करने वाले की तरफ नहीं देखा। कई देर जब गुजर गई तो उसके बाद अपना सर ऊपर उठाया और कहा कि इस्तवा तो मालूम है मगर उसकी कैफियत गैर वाज़े है, मजहूल है, और इसके बारे में सवाल करना बिदअत है। और उसके बाद अपने जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे वहाँ पर, उनसे कहा कि इस शख्स को इस महफिल से निकाल दिया जाए। तो ये भी एक दरअसल इस्तवा अलल अर्श पर ईमान लाना वाजिब है, और ये अकीदा रखना कि अल्लाह ताला हर जगह अपने जिस्म के साथ मौजूद है, ये बातिल अकीदा है और गुमराही पैदा करने वाला अकीदा है, और उसी की वजह से इंसान मज़ीद गुमराह होता चला जाता है। अल्लाह ताला उसका इल्म हर चीज़ पर छाया हुआ है, जैसे कि हम आयतल कुर्सी में पढ़ते हैं, लेकिन ये अकीदा रखना कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। हमको भूल से भी ज़ुबान से ये कलिमात नहीं निकालने चाहिए। अगर कहीं तफसीर में ये जुमला निकल गया हो तो अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ करे और हम सबको माफ़ करे। तो अल्लाह ताला हर जगह मौजूद नहीं है, बल्कि उसका इल्म हर तरफ छाया हुआ है, और वो इस्तवा अलल अर्श है, यानी उसने अपने अर्श पर करार पकड़ा है। लहू मा फिस समावाती व मा फिल अर्दी व मा बैनहुमा व मा तहत सरा, जो कुछ ज़मीन और आसमान और उनके दरमियान और जो ज़मीन की इंतहाई गहराई में है, उन सब चीज़ों का वो मालिक है। तहत सरा का लफ्ज़ आया यहाँ पर, सरा ज़मीन का निचला या अंदरूनी हिस्सा, जो कोर ऑफ अर्थ कहते हैं, और सुरैया कहकशां को कहा जाता है, उसका ये कहकशां का अपोजिट है ये सरा। जैसे अभी हमने बात की ना कि ज़मीन, इंसान आज तक इसके बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगा सका है कि ज़मीन का जो नीचे का हिस्सा है कोर, वहाँ तक भी इंसान नहीं पहुँच सका। वो कितना भी अपनी सारी मशीन इस्तेमाल कर ले, लेकिन आज तक कोई ऐसी मशीन ईजाद नहीं हुई है कि अगर वो ज़मीन में होल करता चला जाता है इंसान, तो वो होल नीचे तक पहुँच जाए, नहीं। तो तहत सरा इन सब का वो मालिक है। तो आप देखें कि अल्लाह ताला की अज़मत इससे हमें मालूम होती है कि ज़मीन और आसमान पर ही अगर इंसान गौर कर ले, तो मज़ीद अल्लाह ताला की अज़मत, उसकी किबरियाई इंसान के दिल में जगह पाए। व इन तजहर बिलकौली फ़इन्नहु यालमु सिर्र व अख्फ़ा, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु लहुल अस्माउल हुस्ना, अगर आप बुलंद आवाज़ से बात करें तो वो तो चुपके से कही हुई बल्कि उससे भी खफी तर बात को भी जानता है। अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं, उसके सारे ही अच्छे नाम हैं। यानी इंसान ज़ोर से बात करे या आराम से या दिल में कोई बात सोचे, कितनी भी आहिस्ता आवाज़ में बात की गई हो, अल्लाह ताला को उसका इल्म है। और सूरह मुजादला के बारे में जो बात हमें पता चलती है, आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब वो खातून खौला बिनत सालबा रदी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने एक मसले का हल पूछने के लिए जब आईं, और वो बहुत परेशान थी, और उसी हुजरे में आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी बैठी थी, और वो खातून भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल जवाब कर रही थी। तो आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुन ली जो सरगोशी थी, और मैं ख़ुद उस कमरे में बैठी हुई थी, मुझे उस औरत की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। अल्लाह ताला तो आहिस्ता आवाज़ में बात की जाए या ज़ोर से, वो हर एक को जानने वाला है। और यहाँ पर जो बात, जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, यालमु सिर्र व अख्फा, सिर पोशीदा छुपी हुई, जैसे हमने इससे पहले भी आपको बताया था इसका फ़र्क, हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको, कि जो छुपी हुई चीज़ है उसको भी वो जानता है, और जो हल्की हल्की सी बात हो, यानी आवाज़ में से कितनी भी आपने धीमी आवाज़ में बात की हो, अख्फा का लफ्ज़ आया है खफीतर, और ये वही अफ़लु तफ़ज़ील का सीगा है। अफ़लु तफ़ज़ील में क्या हमने पढ़ा था कि जैसे वाहिद है, जिसका मतलब होता है कि एक, और अहद ऐसा एक कि उसके जैसा कोई नहीं, इसी तरह से सगीर है, जिसका मतलब होता है छोटा, और असगर इतना छोटा, बहुत ही छोटा। तो इसीलिए अख्फा ऐसी छुपी हुई बात जो कोई भी नहीं सुन सकता, अल्लाह ताला को उसका भी इल्म है। और इसी बिना पर क्यों कहा गया कि इंसान जो सरगोशियाँ करता है, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि कोई तीन लोग बात करते हैं तो चौथा उसमें अल्लाह सुबहाना ताला होता है, यानी वो सुन रहा होता है सरगोशियाँ भी। तो इंसान धीमी आवाज़ से बात करे या ज़ोर से, चुपके से बात करे, जो भी है, अल्लाह ताला को उसका इल्म है। हम होठों में जो बातें, होठों ही होठों में जो हमारी बातें रह जाती हैं, बाज़ औक़ात किसी पर तंज किया जाता है, बाज़ औक़ात किसी पर फ़िक्रे कसे जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ऐसा होता है ना कि किसी को डांट दिया या किसी के साथ किसी को बातें सुना दी, अब जो सामने वाला है बाज़ औक़ात वो छोटा होता है, या तो ओहदे में या दर्जे में या उम्र में, अब वो ज़ोर से नहीं कह सकता बड़ों के सामने। आपने देखा होगा ना, ऐसे आपको बहुत सारे मौके आए होंगे आपकी ज़िंदगी में भी। बाज़ वक़्त बच्चे भी ऐसा करते हैं कि बड़े डांट देते हैं तो बच्चे वहीं होठों ही में बड़बड़ाते रह जाते हैं। यानी ऐसी बातें होती हैं, सरगोशियाँ, हल्की आवाज़ में बात, कि बड़े सुन भी ना सकें और वो लोग कह भी दें। तो अल्लाह ताला को उसका भी इल्म है। अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं, उसके सारे ही अच्छे नाम हैं, लहुल अस्माउल हुस्ना। और आपको याद होगा सूरह बनी इसराइल का जो इख्तिताम हुआ था, वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला के अच्छे नाम हैं, लिहाजा उसको उसी नाम से पुकारो। तो इससे हमें मालूम होता है कि जो अल्लाह ताला की सिफात हैं या अल्लाह ताला के जो नाम हैं, उन्हीं नामों के साथ हमें अल्लाह ताला को पुकारना चाहिए। और इसी बिना पर अवॉइड किया जाता है कि खुदा का लफ्ज़ दरअसल ये पर्शियन लैंग्वेज से निकला है, और चूँकि वो लोग दो खुदाओं को मानते थे तो उसके लिए भी वो लोग खुदा ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। और खुदा का लफ्ज़ दरअसल और दूसरी मानों में भी इस्तेमाल होता है, उसके वो मानी नहीं बनते हैं जो अल्लाह ताला की जो सिफात हैं या अल्लाह ताला के जो नाम हैं उस पर वो मैच नहीं होता है। तो इसीलिए मना किया गया है कि कोई और नाम अल्लाह के लिए मखसूस किया जाए। तो जो नाम अल्लाह ताला ने अपने लिए मखसूस किए हैं, जो हमें अहादीस से भी पता चलते हैं और ख़ुद कुरान में भी अल्लाह ताला ने जो अपनी सिफात बयान की हैं। आप देखिए अक्सर आयात का जो इख्तिताम होता है उसमें अल्लाह सुबहाना ताला की मुख्तलिफ सिफात बयान होती हैं, तो या तो उन सिफात के ज़रिए से पुकारा जाए या जो अल्लाह ताला के नाम हैं उन नामों से पुकारा जाए। और सही अहादीस से हमें जो पता चलता है कि तकरीबन 99 नाम जो है अल्लाह सुबहाना ताला के हैं, और उससे ज़्यादा नाम भी हमको मिलते हैं। और दरअसल ये नाम अल्लाह ताला की सिफात को ज़ाहिर करते हैं, और अल्लाह और रहमान किसी और मखलूक का नाम नहीं हो सकता। इसी बिना पर किसी को रहमान कह के पुकारना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, जायज़ ही नहीं है। अगर आपको किसी को पुकारना, क्योंकि किसी का नाम है अगर अब्दुलरहमान, तो आपको कंप्लीट पूरा नाम लेना पड़ेगा अब्दुलरहमान। आप अगर, क्योंकि पीछे सूरह बनी इसराइल में हमने यही पढ़ा था ना कि वो पूछते हैं कि वमर रहमान, रहमान क्या है, तो रहमान नाम अल्लाह ताला ने ख़ास अपने लिए मखसूस किया है। और अल्लाह ताला को जो नाम पसंद है उनमें अब्दुलरहमान, अब्दुल्ला ये नाम आते हैं। तो अगर आपको नाम रखना है अब्दुलरहमान, तो आप बुलाते वक्त जब पुकारेंगे किसी को तो अब्दुलरहमान कहेंगे, सिर्फ रहमान नहीं कहेंगे, क्योंकि सिर्फ़ अल्लाह के लिए मखसूस है। अब यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हो रहा है, और जैसे कि अभी हमने ये बात डिस्कस की कि कुरान जब नाजिल हो रहा था तो सूरह तौहा शुरू के दौर, यानी शुरू नहीं हम कह सकते, समझे कि बीच का जो दौर था उस वक्त की सूरत हमें नज़र आती है। तो उसी वक्त से मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात कुरान में बयान किए गए। और क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुश्किलात का सामना था, दरअसल वही हालात मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी पेश आए थे। यानी दोनों के हालात बहुत ज़्यादा मिलते जुलते थे, वो मुंतबिक हो रहे थे एक दूसरे पर। तो इसी बिना पर मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आपको कुरान में बहुत ज़्यादा मिलेगा, कसरत से मूसा अलैहिस्सलाम का क़स्सा कुरान में जगह जगह इरशाद किया गया है, कसरत से मूसा अलैहिस्सलाम का क़स्सा कुरान में बयान किया गया है। और दरअसल ये इसीलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढारस बंधे कि आपका सामना जिन लोगों से है, ये दरअसल यही जालिम और जाबिर नहीं है, बल्कि इससे पहले जो हमारे अंबिया गुजरे हैं उनके साथ भी यही हालात, वाक़यात और मामला पेश आए थे, और उन्होंने उसको किस तरह से हैंडल किया था। तो आप भी इसको इसी तरह से हैंडल करिए, यानी आपको इससे सपोर्ट हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और यहाँ पर दरअसल किस्से की जो इब्तिदा है मूसा अलैहिस्सलाम को नबुवत मिलने के वाक़े से रिलेटेड है, बताया जा रहा है। और जो अगली आयत हम पढ़ेंगे उसमें मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन के वाक़यात का जिक्र है, कि उनका किस तरह से वो मदियन गए, फिर किस तरह से वहाँ पर वो उन्होंने 10 साल की मुद्दत पूरी की, फिर वहाँ से वापस आए, फिर फ़िरौन के पास गए। तो देखते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को। वहल अता का हदीस मूसा इज़रा नारम फ़क़ाल अली अहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारा इन्नी आनस्तु नारा लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा फ़लम्मा अताहा नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुका फ़ख्लान अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसि तुआ। और क्या आपको मूसा अलैहिस्सलाम की खबर पहुंची है? जब उसने आग देखी तो अपने घर वालों से कहा, ठहरो, मुझे आग नज़र आई है, शायद मैं वहाँ से आपके लिए कोई अंगारा ला सकूँ, या मुझे वहाँ से राह का ही पता चल जाए, यानी रास्ते का पता चल जाए। वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें आवाज़ आई, ऐ मूसा, बिला शुबा मैं तुम्हारा रब हूँ। इस वक्त तुम तुआ की मुकद्दस मैदान में वादी में हो, लिहाजा अपने जूते उतार लो। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ। कितना बड़ा दर्जा, कितना बड़ा ऑनर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी जा रही कि आपको मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की भी भला खबर है, और ये वाक़या उस वक्त का है जब मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से अपनी पूरी मुद्दत करके वापस आ रहे थे, और आपकी फ़ैमिली आपके साथ थी। और आपको याद होगा, ये जो उम कुसु का लफ्ज़ है, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, मकसा या मुकसिन। तो यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम, जब कहा जाता है कि रास्ता भटक गए, हो सकता है अंधेरे की वजह से भटके हों, तो उन्होंने कोई आग देखी जो दरख्त से निकल रही थी, तो उस आग को देखकर उन्होंने कहा कि मुझे आग दिखाई दी है, ठहरो, मुझे आग नज़र आई है, शायद मैं वहाँ से आपके लिए कोई अंगारा ला सकूँ, यानी रास्ते के लिए कोई निशान, या जो भी उस वक्त जो उनको मुश्किलात पेश थी या रास्ता भटक गए थे, तो उसके लिए हो सकता है उससे उनको राह मिल जाए। तो जैसे वो आते हैं ना कि लेने गए थे आग और पैगंबरी मिल गई। सुभान अल्लाह, किस तरह से अल्लाह ताला ने चुना। और आप देखें कि अल्लाह ताला ऐसे ही अपने बंदों को नहीं चुनता है। ये भी बात आप देखें, पिछली दफ़ा भी हमने डिस्कस किया था कि मूसा अलैहिस्सलाम से एक शख्स का अनजाने में कत्ल हो गया, यानी आपका इंटेंशन नहीं था, आपकी नीयत नहीं थी, आप एक दूसरे मज़लूम को बचाना चाह रहे थे और उस मज़लूम की मदद करना चाह रहे थे, लेकिन उस शख्स की डेथ हो गई। और जब वो वहाँ से चल पड़े और मदियन पहुँचे, तो 10 साल की मुद्दत उनको वहाँ गुजारनी पड़ी। ये भी आप देखें कि एक महल में परवरिश पाने वाले, हर तरह की फैसिलिटीज़ उनको हासिल थी। फिर वालदा, अपनी कौम, अपना शहर, अपना वतन, इन सब को छोड़कर रहना मामूली बात नहीं। फिर भी उन्होंने 10 साल वहाँ पर मुद्दत गुजारी जो उन्होंने वादा किया था अपने ससुर से। और वो हो सकता है शोएब अलैहिस्सलाम हो, या शोएब अलैहिस्सलाम के कोई पैरोकार हो, पहले वो जो भी हो, क्योंकि इसके बारे में बहुत बहस चलती रहती है कि वो शोएब अलैहिस्सलाम थे या नहीं थे। तो बहरहाल वहाँ पर उन्होंने 10 साल की मुद्दत पूरी की, जॉब करते रहे, और 10 साल बाद वो अपने वतन वापस आ रहे थे। आप देखिए, अल्लाह ताला ने आपकी कुर्बानी को ज़ाय नहीं जाने दिया। अब यहाँ पर आपको नबूवत मिली, अल्लाह ताला ने उनको चुना, उनसे कलाम किया, और कहा जाता है कि आज भी वो दरख्त उसी तरह से ग्रीन है, हरा भरा है। जब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे तो देखा कि जहाँ आग भड़क रही थी वहाँ एक दरख्त है, और आग से ना तो धुआं ही उठ रहा है और ना ही दरख्त जल रहा है, बल्कि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनसे भी बात पता चलती है कि आज भी वो दरख्त हरा भरा ही है। तो अल्लाह सुबहाना तआला ने निदा दी कि मैं ही, इन्नी अना रब्बुक, कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ। फ़खला नालैक, क्या करो, अपने जूते उतार दो, क्योंकि इस वक्त तुम इन्नक बिलवादिल मुक़द्दसी तुआ, तुआ की मुक़द्दस वादी में हो। अल्लाह ताला ने उस ज़मीन को चुना, इसीलिए उसको मुबारक सरज़मीन क्यों कहा जाता है, अर्दुल मुक़द्दसा, मुक़द्दस ज़मीन, मुबारक ज़मीन, क्योंकि वहाँ पर अम्बिया कराम कसरत से आए। वही जगह है जहाँ पर अल्लाह सुबहाना तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से बात की, जिस तरह से कलाम किया जाता है, और वही सरज़मीन है जहाँ पर अम्बिया मदफून भी हैं, इसीलिए इसको मुक़द्दस सरज़मीन कहा जाता है। तो कहा कि तुम इस वक्त मुक़द्दस वादी तुआ में हो। और फ़खला नालैक के बारे में जो बात हमें पता चलती है कि जूते उतार दो, तो अब हम ये नहीं जानते कि उस वक्त जूते उतारने की बात क्यों की गई। हो सकता है मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में जूते पहनकर कोई इबादत करना या कोई अहम काम करना मायूब हो या नापसंदीदा हो, लेकिन आज हम शरीयत मोहम्मदी में ये बात देखते हैं कि खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते पहनकर नमाज भी पढ़ी है, और जूते रखने का तरीका भी हमें बताया है कि जब नमाज पढ़ी जाए और अपने जूते हमें रखने हो तो दोनों पैरों के दरमियान में हम जूते रखें, ताकि किसी बाजू वाले को तकलीफ़ ना हो। और खुसूसन हमें ये भी जिक्र मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो रिवायत हमें मिलती हैं, जिसमें یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو، وہ جوتے پہن کر نماز نہیں پڑھتے، لہٰذا تم جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہو۔ اور مسجد نبوی میں صحابہ کرام نے جوتے پہن کر نماز بھی پڑھی، لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب مسجد نبوی میں فرش نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی کارپیٹ تھا، نہ کوئی چٹائی تھی، اور نہ ہی کوئی چکنا فرش تھا، بلکہ مٹی اور پتھر جو ہوتی ہے نا، موٹی موٹی ریت جو ہوتی ہے، تو وہ اس سے اس کا فرش بنا تھا، اور جب گرمی ہوتی تو انتہا کی گرمی ہو جاتی، جس کی وجہ سے وہ ریت یا جو کنکریاں تھیں وہ گرم ہو جاتی تھیں، جس پر پیر رکھنا مشکل تھا، اور سردی ہوتی تو وہاں پر سردی ہو جاتی، اور بارش اگر ہوتی تو وہاں کیچڑ سا ہو جاتا تھا۔ اسی بنا پر اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ جوتے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے اور شریعت محمدی میں جائز ہے۔ تو عام حالت میں جوتے کے ساتھ مسجد جانا بلکہ نماز ادا کرنا یہ درست ہے۔ ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے جوتے پر کچھ گندگی وغیرہ لگ گئی ہو، اسی وجہ سے جوتے اتارنے کی ہدایت کی گئی ہو، کیونکہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود ایک بار آپ نماز میں تھے اور آپ جوتے پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے نماز ہی کے دوران جوتے اتار دیے، تو آپ کو جوتے اتارتے دیکھ کر تمام صحابہ اکرام نے نماز میں اپنے اپنے جوتے اتار دیے۔ جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ تو انہوں نے کہا صحابہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ نے اتارا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دراصل مجھے جبریل خبر دے گئے کہ آپ کے جوتوں میں گندگی ہے، میں نے اس بنا پر جوتے اتار دیے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے نماز کے دوران بھی جوتے پہنے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے یہاں پر، خصوصاً ہمارے انڈیا پاکستان میں، یہ بات معیوب سمجھی جاتی کہ گھروں میں جوتے پہن کر جایا جائے، یا اس کو بالکل ہی غیر اسلامی کام سمجھتے ہیں کہ جوتے پہن کر گھروں میں گھومنا یا کھانا کھانا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے گندگی کی وجہ سے گھروں میں لانے کے لیے منع کیا گیا ہو جوتوں کو، کہ گندگی نہ لگی ہو اس کو۔ اگر جوتوں کو گندگی نہیں لگی ہے تو آپ گھر میں بھی پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، چپل آپ پہن سکتے ہیں۔ لیکن آج کل کی جو مسجدیں ہیں، چونکہ الحمدللہ آج کی جو مسجدیں ہیں ہم سب جانتے ہیں اس میں بہترین کارپیٹ ہے یا پھر چٹائیاں ہیں، تو ابھی تو پھر جوتوں کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جوتے پہنے تھے کہ کنکریاں بہت گرم ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے پیر اس پر رکھے نہیں جا سکتے تھے۔ ہاں اگر کچھ لوگوں کو تکلیف ہے تو ایسے قسم کے آج کل جوتے بھی ملتے ہیں، جو جوتے تو نہیں ہوتے ہیں بلکہ موزے ٹائپ ہی ہوتے ہیں، تو وہ پہن کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت نمبر 13، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَيَسُدَّنَّكَ أَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، لہذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، صلاۃ قائم کرو۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں اسے خفیہ کرنے والا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی جد و جہد کا بدلہ پائے۔ لہٰذا جو قیامت پر ایمان نہیں لایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہا، تمہیں اسے روک نہ دے ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، اخترتک۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو جملہ ہے اور آگے آئے گا واصطنعتک لنفسی، آیت نمبر 41 میں، یہ جو جملے ہیں ایسے دل کو موہ لیتے ہیں اور اندر سے کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا تھا یا اپنے کام کا بنا لیا۔ میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا، واصطنعتک لنفسی، اور اخترتک، میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں چنتا ہے بندوں کو، کیا کوالٹیز ان کے اندر ہوتی ہیں جس کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو چنتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی وہ کوالٹیز جو ان کے اندر صفات تھیں، وہ تمام ایک پیج پر آپ لوگ لکھیں اور پھر تجزیہ کریں کہ اگر ہم چاہتے ہیں، یعنی میں اور آپ، دیکھا جائے تو ہم سب کی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو چن لے، ہے نا؟ اگر کہیں سے ہمیں ندا آ جائے یا کہیں سے ہمیں کوئی اس طرح کا کوئی پروانہ مل جائے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ ہماری خوشی کی کیا انتہا ہوگی، کیونکہ हम में से हर एक की ख्वाहिश है, चाहे वो कोई कितना भी नाफरमान क्यों ना हो, उसकी भी ये ख्वाहिश होगी कि अल्लाह ताला की नज़रों में वो जच जाए, अल्लाह ताला की नज़रों में वो अच्छा ठहरे। ऐसी वो क्या सिफात होती हैं बंदों में जिसकी बिना पर अल्लाह ताला अपने बंदों को चुन लेता है। हम सब जानते हैं नबुवत तो ख़त्म हो गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। लेकिन नेक लोग, सिद्दीक, शुहदा, सालेहीन, ये सब उम्मत में कसरत से होंगे। लेकिन जैसे कि सूरह वाकया में जो हमें बात पता चलती है कि अगलों में से बहुत और पिछलों में से कम, लेकिन वहाँ पर कम की बात की गई है, ये नहीं कहा गया कि होंगे ही नहीं। तो क्यों ना हम उन कम लोगों में अपने आप को शुमार करवाएं कि वो हम क्यों नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला किस बिना पर चुनता है, वो क्या क्वालिटीज़ होती हैं, वो क्या सिफात होती हैं जिसकी बिना पर अल्लाह सुब्हान ताला बंदों को चुन लेता है। तो बग़ैर भूले आपको ये काम करना है और मूसा अलैहिस्सलाम की तमाम सिफात को एक पेज पर लिखना है और फिर अपने आप का तज्जिया करना है कि क्या मेरे अंदर ये सिफात पाई जाती हैं, क्योंकि फिर हो सकता है, उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे भी फिर अपने काम के लिए चुन ले इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को चुन लिया और फरमाया कि फस्तमे लिमा यूहा, गौर से सुनो जो आपके ऊपर वही किया जाता है। इसी से मालूम होता है कि आपको नबुवत यहीं पर मिली थी मूसा अलैहिस्सलाम को, जब वहाँ से वो लौट रहे थे, मदीन से वापस आ रहे थे। और पहले भी हो सकता है कुछ खुफिया इशारा किया जाता रहा हो, लेकिन नबुवत ख़ास तौर से इसी वक्त मिली। फिर अल्लाह ताला ने जब अपना तारुफ़ फरमाया, तो तारुफ़ की जो इब्तिदा है वो इबादत की ताकीद से की, और इबादत में भी इन सब इबादतों का जो निचोड़ या मंबा कहना चाहिए वो सलात है, उसका जिक्र किया गया। इससे आप नमाज की अहमियत का अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह सुब्हान तआला अपना तारुफ़ फरमा कर फरमा रहे हैं कि इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़ाबुदनी व अकीम सलात लिज़िक्री, कि बिलाशुबा मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इला नहीं, लिहाजा मेरी ही इबादत करो और मेरी याद के लिए सलात कायम करो। तो नमाज दरअसल क्या है, ये अल्लाह की याद दिलाती है, अल्लाह से ताल्लुक़ को जोड़े रखती है, अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत करती है। और आप देखें ना कि जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी देखी है ना, बिजली, आप देखिए कि जैसे ही आप बटन ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से दौड़कर बर्क की रफ़्तार से पहुंच जाती है लाइट तक, और वो लाइट ऑन हो जाता है, रोशनी जल जाती है। तो वो कितना, कैसा वो सप्लाई होगा इलेक्ट्रिसिटी का, कैसी वो बर्क रफ़्तारी से गुजरती होगी कि बटन ऑन करते से बिजली वहाँ दौड़ गई, वहाँ पर वो कनेक्ट हो गई और वो लाइट ऑन हो गया, रोशनी आ गई या फ़ैन ऑन हो गया। तो ये जो ताल्लुक़ है या ये बर्क रफ़्तारी से दौड़ना है बिजली का, कि ये जो कनेक्शन दिया जाता है अंदर, तो वो कनेक्शन अगर है तो ही बिजली आएगी। अगर कनेक्शन कहीं डिस्कनेक्ट है, कहीं मुनक़ते है, कहीं कोई केबल कटा हुआ है, बीच में से जुड़ा हुआ ही नहीं है, मिलता ही नहीं है वो तार, तो आप बताइए क्या बिजली आ सकती है, वो रोशनी जल सकती है या फ़ैन ऑन हो सकता है? नहीं ना। तो अल्लाह की याद से मुंह मोड़ना या अल्लाह की याद से गफलत बरतना, दरअसल इंसान का ईमान उससे कमज़ोर हो जाता है, बल्कि ईमान ही चला जाता है। क्यों कहा गया है कि कुफ्र और ईमान के दरमियान जो चीज़ फैसला करती है, जो फ़र्क करने वाली है, वो क्या है? सलात, नमाज। तो ये इंसान को अल्लाह से जोड़े रखती है, इंसान का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत रहता है सलात की वजह से। जो ईमान का सप्लाई है, वो ईमान उसे हासिल होता रहता है और वो ईमान ताज़ा रहता है, वरना ईमान मुर्दा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है दिलों से। और ये ईमान ही तो दरअसल इंसान को उसकी जो असल रूहानी ज़िंदगी है, वो ईमान ही है देखा जाए तो। उसमें भी जो ख़ास तौर से कहा गया कि मेरी याद के लिए नमाज कायम कर, तो फिर नमाज के ताल्लुक़ से हमारा रवैया कैसे होना चाहिए? क्या नमाज हम छोड़ सकते हैं? क्या नींद आने की वजह से या रात में लेट सोने की वजह से क्या हम फजर छोड़ सकते हैं? इतने जो रात भर सोता रहता है इंसान, तो समझे कितनी देर हो गई उसको अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम किए हुए। तो उसे तो फजर में फ़ौरन उठना चाहिए कि मुझे इतनी देर हो गई है अल्लाह ताला से मेरा ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ, मेरा लिंक नहीं जुड़ा अल्लाह ताला से, मुझे ईमान की क़ुव्वत कैसे हासिल होगी, मुझे अपने ईमान को बरकरार रखना है, अपने ईमान को बढ़ाना है। तो वो अल्लाह की याद से हो सकता है, और अल्लाह की याद किस चीज़ से होती है? नमाज से। वो हदीस हमें मिलती है ना, जिसमें जिक्र किया गया है कि मैंने सलात को आधा आधा अपने बंदे और अपने दरमियान तकसीम कर लिया हूँ। और सबसे ज़्यादा इंसान अल्लाह ताला से उस वक्त करीब होता है जब वो सजदे में होता है, वस्जुद वक्त करीब। तो नमाज़ दरअसल अल्लाह ताला की याद हमें दिलाती है, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को जोड़े रखती है, और ईमान उसकी वजह से हमारा ताज़ा होता रहता है। और ये दिन भर में जो पांच औकात हम अल्लाह ताला के आगे झुकते हैं, दरअसल ये वही तो पावर है जो हमें सप्लाई हो रहा है, ईमान की क़ुव्वत जो हमें हासिल हो रही है, जो हमें ज़िंदा रखे हुए रूहानी तौर से। तो नमाज का जिक्र किया गया कि मेरी याद के लिए नमाज कायम करो, और फिर नमाज कायम करना है, और कहा गया कि इन्न साअता आतियतुन अकादु उख्फिहा लितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसअ, कि क़यामत यकीनन आने वाली है, मैं उसे खुफिया करने वाला हूँ ताकि हर शख्स अपनी जद्दोजहद का बदला पाए। अब यहाँ पर साआ का लफ्ज़ आया है, यानी क़यामत जो कि अचानक आएगी, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि अच्छा अब आएगी या जब आएगी या अभी आने वाली है, कोई ख़बर नहीं आएगी पहले से। बल्कि लोग रोज़मर्रा के कामों में लगे होंगे, जानवरों को पानी पिलाने वाले अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए ले जा रहे होंगे खेतों पर, कपड़ा बेचने वाला कपड़ा बेच रहा होगा, दूध पीने वाला दूध पी रहा होगा, हर कोई अपने काम पर निकला हुआ होगा, और अचानक क़यामत कायम हो जाएगी। तो इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुबहाना तआला के पास है, इसका इल्म किसी को भी नहीं है। तो कहा जाता है, कहा गया कि क़यामत आने वाली है और मैं उसे खुफिया करने वाला हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसका इल्म अपने पास रखा है क़यामत का। क्यों खुफिया रखा है? क्योंकि अगर अल्लाह ताला बता देता तो फिर तो मामला ही ख़त्म हो जाता, लोग पहले से अलर्ट हो जाते कि अच्छा इतने और इतने बजकर या इतने फ़लाँ फ़लाँ दिन जो है क़यामत आने वाली है, लिहाजा उससे एक 8 दिन पहले नेक बन जाओ और तौबा कर लो, तो फिर तो कोई चार्म ही ना रहता ना उसमें, और कोई आजमाइश की बात ही नहीं थी, फिर जजा और सज़ा की बात ही नहीं थी। लिहाजा उसका जिक्र खुफिया रखा गया कि कब आएगी, उसका इल्म जो है खुफिया रखा गया कि कब आएगी किसी को नहीं पता, अचानक आएगी। क्यों? लितुज्जा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसअ, ताकि हर शख्स अपनी सही का बदला पाए, जो कुछ उसने सही की है उसका उसको बदला दिया जाए। क़यामत किस लिए कायम होगी? हर नफ्स को उसका बदला दिया जाएगा, जो कुछ उसने जद्दोजहद की, जो कुछ उसने काम किया, जो कुछ उसने सही की, जो कुछ उसने कोशिश की दुनिया में, जिसने दुनिया के लिए कोशिश की होगी उसको उसका दुनिया में बदला देकर वहाँ आखरत में उसके लिए फिर जहन्नम होगी, और जिसने दुनिया में रहते हुए आखरत के लिए कोशिश की थी, जद्दोजहद की थी, सही की थी, उसके लिए फिर क्या होगा? आखरत में अच्छा बदला होगा। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए क़यामत का इल्म मख्फी रखा ताकि हर शख्स अपने किए का बदला पाए। फ़ला यसुद्दन्नक अन्हा मन ला युमिनु बिहा वत्तबअ हवाहु फतर्दा, लिहाजा जो क़यामत पर ईमान नहीं लाया और अपनी ख्वाहिश के पीछे लगा रहा, तुम्हें इससे ना रोक दे वरना हलाक हो जाओगे। यानी आप अपना काम करते रहिए, और क़यामत के बारे में जो सवालात लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग कुफारे मक्का इन बातों के जवाब में फ़िक्रे कसते, तंज करते और कहते कि अच्छा जिस क़यामत की आप बात कर रहे हैं या जिस क़यामत की आप धमकी दे रहे हैं वो आ क्यों नहीं जाती, उसे लेकर आइए। तो उनकी डिमांड पर नहीं की जाएगी क़यामत, लाई नहीं जाएगी, बल्कि उसका अपना एक वक्त मुकर्रर है और अल्लाह ताला देखना चाहते कि कौन क्या करता है। और अगर ये लोग बातें बना रहे हैं तो आप इनको बातें बनाने दीजिए, उनके ख्वाहिशात की पैरवी ना करिए। अगर आपने लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी की और लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक चले तो वो तो फिर हलाक कर देंगे। इसीलिए जो एक दीन का दाई होता है वो लोगों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक दीन नहीं पेश करता, बल्कि वो अल्लाह ताला ने जो दीन हमारे लिए जो तरीका पसंद किया है वो उस हिसाब से लोगों में तबलीग करता है। क्योंकि अगर हम लोगों की ख्वाहिशात के पीछे चलेंगे तो आप देखें लोग तो कभी भी किसी भी हाल में चैन से नहीं बैठने वाले। वो एक आपको कुछ कहेगा तो दूसरा कुछ कहेगा, एक कहेगा कि सुबह क्लास रखी जाए, दूसरा कहेगा कि शाम में क्लास रखी जाए। अगर आप लोगों के कहने पर चले तो कहेंगे कि अच्छा नमाज फजर की बहुत जल्दी होती है, लिहाजा थोड़ा सा 9 बजे रख दी जाए ताकि हम जब नींद से जागें तो नींद से जाग कर हम नमाज़ पढ़ें, हमारी नींद कम्प्लीट हो जाए उस वक्त हम नमाज़ पढ़ें। एक कहे कि नहीं मुझे सुबह सवेरे ड्यूटी जाना पड़ता है, 9 बजे मेरा ड्यूटी का टाइम है, लिहाजा नमाज 7 बजे हो। तो अगर लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी की जाए तो लोग तो किसी हाल में किसी करवट चैन से नहीं बैठने देते। जो असल दीन है आप उसे पेश करिए, क्योंकि उलमाए यहूद ने जब लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक दीन को पेश किया तो आप देखें दीन की शक्ल ही बिगड़ कर रह गई। आज भी अगर हम लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक चलें और लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक काम करें, आप देखें लोग कभी भी कोई काम करने नहीं देंगे। आप करते जाइए, जैसे मिसाल के तौर पर आज जब दीन की दावत की बात की जाती है तो आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं और मायूसी की कैफियत पैदा करते हैं, कहते हैं अच्छा इतना काम करके क्या फ़ायदा, क्या ये सब ज़बरदस्ती कुरान पढ़ाना पढ़ना या हदीसें पढ़ना क्या इससे चेंज आ रहा है? कोई चेंज तो नहीं आ रहा है, सब लोग गुनाहों में मुलविस हैं, बुरे काम हो रहे हैं, लोग कोई दीन की तरफ नहीं आते, खुद मुसलमान दीन की तरफ नहीं आते, कोई ना सीखना चाहता है, ना सिखाना चाहता है, ना पढ़ना चाहता है, ना पढ़ाना चाहता है, तो करके क्या फ़ायदा, इसलिए बस अपनी जगह बैठे रहो। तो नहीं, आप अगर लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक चलें कि लोग कहें कि नहीं काम ना करो, ये दीन का काम छोड़ दो, तबलीग छोड़ दो, इस्लाह करना छोड़ दो, क्योंकि कोई चेंज नहीं हो रहा है इससे, तो लोग तो आपको कभी भी नहीं ये काम करने देंगे। आप अपना काम करते जाइए, क्योंकि इसका जो अजर है वो बेइंतहा है, और ये हम पर लाजिम करार दिया गया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिलमारूफ़ी व तनहौना अनिल मुनकर व तूमिनूना बिल्लाह, कि तुम तो निकाली गई हो, उम्मत उम्मत मुस्लिमा बरपा ही की गई है इसलिए कि वो ये दीन की दावत का काम करें, खैर की दावत दें, बुराई से रोकें, भलाई के कामों की ताकीद करें। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमसे क़यामत के दिन पूछ हो जाएगी। तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया जा रहा है कि आप ये जो कुफ्फारे मक्का है, सरदाराने कुरैश हैं, इनकी ख्वाहिशात की पैरवी मत करिए, ये तो आपको कहीं का नहीं रखेंगे। अगर आप उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करने लगे तो ये तो आपको हलाक कर देंगे। लिहाजा जो अल्लाह की तरफ से हुक्म आ रहा है आप उसे बताते चले जाइए। वमा तिलका बियमीनी का मूसा क़ाल हिया असवाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिय फ़ीहा मआरिबु उख़रा क़ाल अल्क़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तस्आ। और ए मूसा, ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? कहा, ये मेरी लाठी, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, मेरे लिए इसमें और भी फ़वाद हैं। फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तस्आ, फरमाया मूसा इसे डाल दो। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे फेंका तो यकदम सांप बनकर दौड़ने लगा। क़ाल खुज़्हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला, फरमाया इसे पकड़ लो और डरो नहीं, हम जल्द ही इसे उसकी पहली हालत पर लौटाएंगे। वद्मुम यदाका इला जनाहिका तख़रुज बैदाअ मिन ग़ैरि सूइन आयतन उख़रा लिनुरियका मिन आयतिनल कुबरा इज़हब इला फ़िरऔना इन्नहु तग़ा। और ज़रा अपना हाथ अपने बगल में दबाओ, ये बग़ैर किसी तकलीफ़ के चमकता हुआ निकलेगा, ये दूसरी निशानी है। ये इसलिए है कि हम तुम्हें अपनी बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखलाने वाले हैं, अब तुम फ़िरऔन के पास जाओ, वो बागी हो गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ और पूछा कि ये आपके हाथ में क्या है? इससे मालूम होता है कि उनके हाथ में कोई ना कोई लाठी थी, असा था, और वो उसको अपने हाथ में रखते थे। तो जब पूछे कि तुम्हारे हाथ में क्या है ए मूसा, तो आप यहाँ पर देखें कि इसका जवाब तो इतना हो सकता था कि ये लाठी है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने तवील जवाब दिया और बात लंबी करते गए। क्यों? क्योंकि खालिक की कायनात से हम कलाम होना, या खालिक की कायनात से कलाम का शर्फ तवील हो, क्योंकि उसका जो लुत्फ़, जो लज्जत थी, जो उनको हासिल हो रही थी, वो और ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसका वक्फ़ा और मज़ीद बढ़ जाए। और वाकई में आप देखें ना कि इंसान की ये आदत है कि जिनको कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनको वो पसंद करता है, या उनकी नेकी की बिना पर या किसी भी बिना पर, बहरहाल तो उसका दिल चाहता है कि उससे ज़्यादा देर तक बात करे, और उससे बात करने के वो कोई ना कोई बहाने ढूंढता रहता है। तो जब अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुखातिब किया मूसा अलैहिस्सलाम को और पूछे कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तो कहा कि ये लाठी है, इससे मैं ये और ये काम करता हूँ, कि मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और भी इसमें मेरे लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसे डाल दो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी डाल दी तो गोया कि वो एक सांप था दौड़ता हुआ, जिसे देख कर मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए, क्योंकि दूसरी जगह हमें जिक्र मिलता है कि वो डर गए थे, और ये भी जिक्र मिलता है कि वो वापस पलटने लगे उस सांप को देख कर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला तखफ, इसको पकड़ लो और ना डरो, हम जल्द ही इसे पहली हालत में लौटा देंगे। तो ये एक निशानी थी मूसा अलैहिस्सलाम को कि वो लाठी अगर डालते तो वो सांप बन जाती, दौड़ने लग। और दूसरी निशानी क्या थी? और ज़रा अपना हाथ अपने बगल में दबाओ, ये बग़ैर किसी तकलीफ़ के चमकता हुआ निकलेगा, ये दूसरी निशानी थी आपको, कि जब आप अपने हाथ को अपने जेब में डालते और जब निकालते तो वो चमकता था, और जब उस वक्त तक वो चमकता रहता जब तक कि आप वापस उसे जेब में ना डाल लेते। सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ी निशानी थी अल्लाह सुभान व तआला की तरफ से। और इसके अलावा अल्लाह ताला फरमाता है हम और भी अपनी बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखलाने वाले हैं, और क्यों दिखलाने वाले हैं? इज़हब इला फ़िरऔना इन्नहु तगा, क्योंकि तुम लोग फ़िरऔन के पास जाओ, वो बागी हो गया है। तो ये जो निशानियाँ आपको दी गई थी, आप अपना हाथ अगर डालते तो वो चमकता हुआ निकलता था और बग़ैर किसी तकलीफ़ के, और चमकता ही रहता था जब तक कि आप उसे दोबारा बगल में ना डाल लेते। और दूसरी, आपकी लाठी जो है या आपका असा, वो सांप बन जाता था। और ये निशानी अल्लाह ताला ने क्यों दी? ताकि फ़िरौन के पास दीन की तबलीग के लिए जाएँ, क्योंकि वो नाफरमान हो गया है। अब आगे क्या हुआ था इंशाल्लाह ताला हम लोग अगले लेसन में देखेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
بسم الله الرحمن الرحيم
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى